ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो गंथरा श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 10, अध्याय संख्या 3, श्लोक संख्या 24, 23, श्लोक संख्या 23। श्री शुक उवाच अथ एनम आत्मजम वीक्ष्य महापुरुष लक्षण देवकी तम उपाधावत कंसात भीता सुविस्मिता। श्री शुक उवाच अथैनमात्मजं वीक्ष्य महापुरुष लक्षणम् देवकी तम उपाधावत कंसाद् भीता सुविस्मिता। श्री शुक उवाच अथैनात्मजं वीक्ष्य महापुरुष लक्षणम् देवकी तम उपाधावत् कंसाद् भीता सुविस्मिता। श्री शुक उवाच अथैनमात्मजं वीक्ष्य महापुरुष लक्षणम् देवकी तम उपाधावत् कंसाद् भीता सुविस्मिता। श्री शुक उवाच श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा अथ वसुदेव द्वारा प्रार्थना करने के बाद एनम इस कृष्ण को आत्मजम अपने पुत्र वीक्ष्य देखकर महापुरुष लक्षणम भगवान विष्णु के समस्त लक्षणों से युक्त देवकी कृष्ण की माता तब उन कृष्ण की उपाधावत प्रार्थना की कंसात कंस से भीता भयभीत सुविस्मिता ऐसा अद्भुत बालक देखकर आश्चर्यचकित। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणान वृंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद सुखदेव गोस्वामी ने कहा तत्पश्चात यह देखकर कि उनके पुत्र में भगवान के सारे लक्षण हैं कंस से अत्यधिक भयभीत तथा असामान्य रूप से विस्मित देवकी भगवान से प्रार्थना करने लगी। तात्पर्य इस श्लोक का सुविस्मिता शब्द महत्वपूर्ण है जिसका अर्थ है चकित। देवकी तथा उनके पति वसुदेव को आश्वासन दिया गया था कि उनका पुत्र भगवान है अतएव कंस द्वारा अवध्य है किंतु स्नेह के वशीभूत होकर तथा कंस की पूर्व निशंसता को सोचकर वे भयभीत हो रहे थे कि कृष्ण का कहीं वध ना हो जाए इसलिए सुविस्मिता शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार हम भी यह सोचकर हैरान हो जाते हैं कि यह आंदोलन असुरों द्वारा कुचल डाला जाएगा या निर्भय होकर आगे बढ़ता जाएगा। तो इसका तात्पर्य
शिल प्रभुपाद ही दे सकते हैं। कई सारे उन्हें तात्पर्य के जैसे तात्पर्य शिल प्रभुपाद ने दिया वैसा किसी भी और आचार्य ने नहीं दिया। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यनामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
तो आज के श्लोक में है श्री सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कैसे कृष्ण का प्राकट्य हो चुका है, पहले बताया जा चुका है, और वसुदेव ने भगवान श्री कृष्ण को देख के प्रार्थना की। अभी देवकी बोलने जा रही हैं तो देवकी भगवान को देखकर चकित है, विस्मित है, भयभीत है। तो व्यासासन से उस साइड बैठते, इस साइड बैठ के भी कभी कभी थोड़ा चकित और विस्मित और भय भी थोड़ा होता है, स्पेशली जब वरिष्ठ भक्त हों तो सबके सामने। तो सभी से आशीर्वाद की याचना करता हूँ सारे भक्तों से कि इस भागवत के इस श्लोक पे हमको अर्थपूर्ण चर्चा कर सकें, सारे भक्तों के प्रसन्नता का कारण बने और श्री भगवान की प्रसन्नता का कारण बने, अपना शुद्धिकरण कर सकें। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भागवतम का दसवां स्कंद। दसवें स्कंद को मुखमंडल से भगवान के कंपेयर किया गया और अभी कुछ ही दिन पूर्व भगवान का हमने जन्म का यहाँ पे मनाया भागवतम क्लास के अंदर में। कुछ दिन बाद हम जन्माष्टमी फेस्टिवल भी मनाएंगे तो इस बार अलग से कृष्ण कथा शायद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कृष्ण कथा सीरीज ऑलरेडी चल रही है भगवान के जन्म का। और बहुत सुंदर सुंदर कैसे भगवान का जन्म के समय क्या लक्षण थे, वो इस ग्रीस कमल लोचन प्रभु आए थे उन्होंने क्लास ली, कैसे एस्ट्रोनॉमी के अकॉर्डिंग, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग, लक्षण शास्त्र के अकॉर्डिंग, जो भी से आयुर्वेद वगैरह के अकॉर्डिंग जो भी था, और उसके बाद भगवान का रूप प्रकट होने पर कैसे था, पवित्र हरि प्रभु ने सुंदर तरीके से बताया कैसा सुंदर रूप था भगवान का। और भगवान का रूप को डिस्क्राइब करते हुए एक बहुत मधुर उन्होंने गीत भी गाया था। उस प्रकार से अन्य अन्य वक्ता आते रहे और भगवान के ग्लोरिफिकेशन करते रहे और वसुदेव भी भगवान को देख के वो भी भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे। सो अभी आया है जब वसुदेव ने भगवान की प्रार्थनाएं कर ली, उतनी देर में जो देवकी थी वो शांत थी। शांत क्यों थी, यहां पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि वो सुविस्मिता, यहाँ पे श्लोक में था नाम आत्मदम वीक्षा महापुरुष लक्षण देवकी तमोपधावत कंसात भीता सुविस्मिता। हाँ, और कंसात भीता, वो कंस से भयभीत भी थी। तो बड़ा स्पेशल है देवकी का यहाँ पे सिचुएशन। सामने भगवान है, उनके पुत्र के रूप में है, भगवान से उनको अफेक्शन भी है, तो उनके पुत्र के उनके गर्भ में थे और गर्भ से आए प्रकट होके, साधारण रूप से नहीं थे गर्भ में, पर भगवान सामने प्रकट हुए और कृष्ण को देख रही है, जान रही कि वो भगवान है, चतुर्भुज रूप में भी देखा, पर साथ में भयभीत भी है और विस्मित भी है, तो बड़ा मिक्स्ड फीलिंग्स है देवकी का और बड़ा स्पेशल रस में जा रहे हैं। सो कोई सोच सकता है देख के कि ये भक्त होके सामने भगवान होके भी इतना भयभीत क्यों है देवकी। तो देवकी नहीं, अगर देखा जाए इस दुनिया में हर कोई भयभीत है, देवकी की बात नहीं, देवकी तो आध्यात्मिक भय है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, परंतु हर व्यक्ति अगर एक एक कॉमन अगर फीलिंग एक कॉमन फीलिंग हर एक लिविंग एंटिटी, हर एक जीवात्मा जो इस भौतिक जगत के अंदर में है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे उसका बिजनेस हो, हर एक के अंदर में अगर एक फीलिंग निकाली जाए तो एक वो होगी भय। स्वतः इस जगत में रहते हुए व्यक्ति भयभीत रहता है हर समय, मृत्यु का सबसे बड़ा भय है, श्योरेस्ट डेथ, बीमारी का भय रहता है, जॉब सिक्योरिटी का भय रहता है, धन का भय रहता है, और देखते हैं इन सारे भय से इंश्योरेंस कंपनी बहुत फायदा उठाती है, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी मार्केट में आती रही है, जितने भी प्रकार के भय होते हैं हर एक भय पर टारगेट करती है, मृत्यु का भय हो गया तो लाइफ इंश्योरेंस कर, नोबडी कैन इंश्योर लाइफ, लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस अपने आप में धोखे देने वाले टर्म है, कोई भी लाइफ इंश्योर नहीं कर सकता, एज श्योर एज डेथ, डेथ इज श्योर सो लाइफ कैन नॉट बी इंश्योर्ड, परंतु लाइफ इंश्योरेंस भी है। फिर लोगों को बीमारी का भय होता है तो मेडिकल इंश्योरेंस भी है, फिर लोगों को ओल्ड एज में क्या करेंगे पेंशन का, तो पेंशन स्कीम भी है, फिर चाइल्ड के एजुकेशन के लिए, हर चीज हर भय पे वो एक कंपनी फायदा उठाने के लिए है। तो लोग भय का ही फायदा उठाते रहते हैं, लोग बड़ा सा घर भी बनाते हैं जिससे क्या होगा, रहने के लिए क्या फैसिलिटी होगी उसके लिए भी बना, तो भय की वजह से बहुत बिजनेस भी हो रहा है, बहुत अच्छा सुंदर बिजनेस भी बन जाता है। तो ये भय जिसके अंदर में हर कोई डूबा हुआ है, ये परेशान है, क्यों परेशान है, क्यों, क्योंकि वो चीजों को भगवान से अलग देखता है। अभी हम देखते हैं जब कुर्सी की छीना झपटी होती, एक कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री या मंत्री जो भी होता है उसको हटाने जाने के लिए कितना भयभीत रहता है, मुझे हटाने दिया जाएगा। अभी हम सुन रहे थे बेंगलोर में कैसे छीना झपटी हो रही है और चीफ मिनिस्टर रो रहे हैं और जो एमएलएज हैं उनको बंद करके रखा जा रहा है इधर उधर से, बहुत सारी चीजें हो रही है, वहां पे भी भय चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि कोई लोअर ग्रेड में है तो वही भयभीत है, कोई बड़े से बड़े मिनिस्ट्रियल पोजीशन पे है उसमें भी भयभीत है। तो भयभीत इस वजह से है कि वो चीजों को भगवान से अलग देते हैं, भगवान से चीजों को अलग देखने की वजह से भय होता है। ये भगवान के भागवतम के 11वें स्कंद के अंदर में नव योगेंद्र बताते हैं, भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात् ईशादपेस्तस्य विपर्ययो स्मृति, कि भय होता है द्वितीय अभिनिवेशतः स्यात्, क्योंकि डुअलिटी के विजन से जब हम देखते हैं कृष्ण है और कृष्ण के अलावा कोई और चीज भी है, कुछ और शक्ति भी है, चाहे श्री राधा राधिकरमन, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, तो कृष्ण के अलावा कुछ और चीज भी है जो कृष्ण के कंट्रोल के बाहर में है, या कृष्ण है ही नहीं, ये भी है, जैसे नास्तिक लोग बोलते हैं कृष्ण है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, तो हर चीज उनको भगवान से अभिन्न, मतलब भगवान से भिन्न ही दिखाई पड़ेगी, क्योंकि भगवान है नहीं तो भगवान से संपर्क करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इस वजह से हमेशा भयभीत रहेंगे, बोल देंगे भगवान नहीं है, हम फ्री रहना चाहते हैं, परंतु मृत्यु का भय रहेगा, बीमारी का भय रहेगा, ये मेरे जीवन में ये ना हो जाए, मेरी गर्लफ्रेंड ना चले जाए, डिवोर्स ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो जाए, उस चीज का भय रहेगा, हमेशा भय में रहेंगे। परंतु एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को आती है, जैसे हिरण्यकशिपु प्राकट्य हुआ और देवतागण उसकी वजह से बहुत भयभीत हो गए, देवतागण भयभीत हो गए, परंतु वहीं पे प्रहलाद महाराज थे वो निर्भीक थे। ऐसा क्यों कि देवतागण भयभीत हैं, प्रहलाद निर्भय हैं, ऐसा किस वजह से? प्रहलाद भी भक्त हैं, देवता भी भक्त हैं, पर दोनों की भक्ति में डिफरेंस है। भक्ति में डिफरेंस क्या है कि सरेंडर के साथ में जो प्रहलाद का विजन था वो कोई भी चीज को भगवान के कंट्रोल के बाहर नहीं देखते थे। और देवतागण कृष्ण को शक्तिशाली तो देख रहे हैं परंतु वो ये भी सोच रहे हैं कहीं ये कृष्ण के कंट्रोल के बाहर की चीज तो नहीं है। जब नरसिंहदेव और हिरण्यकश्यप का युद्ध भी हो रहा है और नरसिंहदेव हिरण्यकश्यप के साथ खेल रहे हैं और हिरण्यकश्यप छुड़ा के एकदम से हाथ कर स्लिप करके निकल जाता है तो देवतागण बिल्कुल घबरा जाते हैं, अरे क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया अब क्या होगा, त्राही त्राही करने लग जाते हैं। तो प्रहलाद कूल एंड काम खड़े हुए हैं, क्यों? क्योंकि देवतागण को अभी भी लग रहा है कुछ चीजें शायद कृष्ण के इन्फ्लुएंस के बाहर हैं। भयम द्वितीया अभिनिवेशतः स्यात्, ड्युअलिटी में उनका भाव है। कृष्ण बोलते हैं अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता, कि जो ये व्यक्ति समझ जाता है अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते कि भगवान ही है जो हर जगह स्प्रेड है अपनी शक्तियों के द्वारा और परमात्मा रूप में ब्रह्म रूप में हर जगह भगवान, चाहे तटस्थ शक्ति हो चाहे अंतरंगा शक्ति हो चाहे बहिरंगा शक्ति हो, हर जगह कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो भगवान की पोटेंसी नहीं है। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति न, हर जगह कृष्ण है। जो इस चीज को समझ जाता है वो बुधा भाव, वो बुद्धिमान व्यक्ति, बुधा बुद्धू और बुधा दो ऑपोजिट शब्द है, तो बुधा या बुद्धिमान, वो बुद्धिमान व्यक्ति क्या कहते हैं भाव के स्टेज पे, वो भाव भक्ति के साथ में इति मत्वा भजन्ते इमाम, वो भगवान को वर्शिप करता है। जो ये समझता है कि भगवान के अलावा नहीं, भगवान है शक्तिशाली है, जैसे कई सारे हम देखते हैं कर्मकांडी यज्ञ और पूजा पाठ इत्यादि होते हैं, वहां आते हैं और विष्णु को स्पेशल पोजीशन देते हैं, सारे देवतागण का वाहन करते हैं, सबसे पहले विष्णु का वाहन करेंगे, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वजा, इस प्रकार से विष्णु का वाहन करेंगे। वो बोलेंगे है विष्णु हम महान है, अन्य देवतागण है और विष्णु है, विष्णु सबसे स्पेशल है पर अन्य भी है। मैं हरिद्वार में गया था तो एक आश्रम में रुका था गंगा जी के तट पे, तो वहां के पुरोहित मिल गए तो बोलने लगे अगर हरि है तो हर है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये तो सही फिलॉसफी बोल रहा है। फिर बोलते हैं हर है तो हरि है, अगर हरि है तो शिव जी है और शिव जी है तभी इसी वजह से। तो वो सोचते हैं कि भगवान भी किसी और पर निर्भर है, भगवान को भी निर्भरता की जरूरत है। वो ये नहीं सच पाते जन्माद्यस्य स्वराट जो शब्द है कि भगवान स्वराट है, पूर्णतः इंडिपेंडेंट है, इस चीज को समझ नहीं पाते और इस वजह से ये समझ नहीं पाते, इस वजह से वो भयभीत रहते हैं। जितने भी वेस्टर्न कह सकते हैं, जितने भी अब्राहमिक रिलीजन हैं उनके अंदर में कई बार इस अब्राहमिक रिलीजन का मतलब कह सकते हैं कि हम कई सारे रिलीजन जैसे इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, जूडाइज्म हो गया, इनके अंदर में ईश्वर और कभी कभी ईश्वर के साथ में शैतान, इसके बारे में बात किया जाएगा, भगवान और शैतान, लॉर्ड एंड सेटन। जब उनके जीवन में कोई उल्टा सीधा कार्य हो रहा होगा तो कहेंगे शैतान के प्रभाव से हो रहा है, या सेटन के इन्फ्लुएंस से हो रहा है, ईविल के इन्फ्लुएंस से हो रहा है, और जब कुछ अच्छा हो रहा होगा तो कहेंगे हाँ भगवान की कृपा से हो रहा है। तो हमेशा भयभीत रहेंगे कहीं सेटन का प्रभाव, शैतान का प्रभाव ना पड़ जाए। तो वो सोचते हैं एक शैतान नाम की चीज है, एक शैतान नाम का चीज नहीं एक व्यक्ति है जो कभी कभी ईश्वरीय शक्ति को हरा देता है, और कभी कभी तो वो पेंटिंग भी बनाते हैं ऐसे कि जिसमें एक साइड में जीसस क्राइस्ट दूसरे साइड में शैतान पंजा लड़ रहा है, ऐसी पेंटिंग भी दिखाएंगे और जीसस क्राइस्ट उस शैतान को हरा रहे हैं। सो कभी कभी इस प्रकार मनोकल्पना वाली चीजें भी करते हैं, परंतु हम देखते हैं एक शैतान था हिरण्याक्ष और हमारे वराहदेव एक थप्पड़ मारा ठक चक्कर खा के वो जमीन पर गिर गया। उसके पहले भी उसके साथ खेल रहे थे, ऐसा नहीं कि वो उनको हरा सकता है, और चाहे तो इच्छा मात्र से ही उसकी मृत्यु कर सकते हैं भगवान, पर भगवान वीर रस का आनंद लेने के लिए ऐसा करते हैं। तो भगवान के इन्फ्लुएंस के बाहर कोई भी चीज नहीं है, इस चीज को समझ जाने की वजह से प्रहलाद महाराज निश्चिंत थे कि भगवान के अगर मुझे कहीं जल में डाल रहे हैं, अग्नि में डाल रहे हैं, कहीं भी डाल रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसका, भगवान तो हर जगह रक्षा करेंगे। कोई भी चीज अगर मुझे जला भी सकती है तो भी भगवान के इच्छा से ही होगा, अगर मेरे जीवन में कुछ हो भी रहा है गलत तो भी भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। जैसे प्रभुपाद जी के बिजनेस जब चला नहीं तो प्रभुपाद जी बोले यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद धनम शने, कि ये भी भगवान की कृपा है। सो भक्त देखता है कुछ भी उसके जीवन में अगर ऊपर नीचे हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, तो वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। एक बार हिजुलने इस भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज आए थे तो बहुत अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया, भगवान भक्त के जीवन में कुछ भी होता है और कुछ उसका लगता है, कुछ उसका लॉस हो गया, डैमेज हो गया, तो बोलता है हरि इच्छा, और कुछ भी अच्छा हो गया तो बोलता है हरि कृपा। तो दो ही चीजें होते हैं भक्त के जीवन में, एक हरि इच्छा और एक हरि कृपा। प्रोग्राम कोई करने कंडक्ट करने गया, बहुत बढ़िया सक्सेसफुल रहा, हरि कृपा। कोई भी नहीं आया, हरि इच्छा। तो हर प्रकार से वो भगवान के हाथों में शेल्टर्ड फील करता है, और इसी तभी वो इस श्लोक के अकॉर्डिंग रह सकता है, तत्ते अनुकंपा सुसुमिक्ष माना भुंजाने वात्म कृतम विपाकम हृद्वाग पूर्वीर विदधन नमस्ते जीवित यो मुक्ति पदे सदाए भाग। वो श्लोक के अकॉर्डिंग रह सकता है, हर सिचुएशन को भगवान की कृपा देख सकता है और हर समय भगवान की सेवा कर सकता है। परंतु जैसा हमने देखा कि जो लोग भगवान को नहीं मानते या मिश्रित रूप से भगवान को मानते कि मतलब भगवान भी है कुछ और भी है, मिश्रित कर्म मिश्र का अगर इन्फ्लुएंस रहता है तो फिर क्या होगा, भय में रहेंगे, आएंगे मंदिर भी आएंगे, भगवान को प्रणाम भी करेंगे, फिर भी कहेंगे मेरे जीवन में इतनी चिंता इतनी समस्या है। क्यों? क्योंकि वो सोच रहे हैं भगवान के अलावा भी उनके जीवन में है कोई जो इंटरफेयर कर रहा है। इस दोष की वजह से, इस त्रुटि की वजह से वो भयभीत रहेंगे, और कभी कभी इस भय की वजह से भगवान पे भी आस्था खो बैठेंगे। हम देखते थे पुरानी मूवीज होती थी, जब कि हीरो के जीवन में कुछ गड़बड़ होता था तो मंदिर में आके घंटे बजा रहा था, तेरी वजह से ऐसा हुआ, बहुत उल्टा सीधा कहता था, तो आज से मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा। एंड में जब विलन की मृत्यु हो जाती तब वो मंदिर में एंटर कर रहा। तो ये सारे चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि इम्परफेक्ट विजन की वजह से, द्वितीय अभिनिवेशता स्यात्। परंतु डिवोटीज होते हैं वो भगवान का आश्रय लेने की वजह से निर्भय रहते हैं। परंतु एक और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है कि भक्त भी भयभीत होते हैं, जो पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त हैं वो भी भयभीत हो जाते हैं, जैसे कि आज देवकी भयभीत हो रही हैं। बोलिए क्या चक्कर है? पहले आप बोला कि वो वाला तरीका है भय से मुक्त होना है, भगवान का आश्रय लो, और भगवान का आश्रय जब पूर्ण रूप से ले लेंगे तो और तब भी भयभीत हो जाएंगे। तो ये भय का प्रमोशन है। ये भय का प्रमोशन कैसा है? ये भय पहले वाला भय नहीं है। पहले वाला भय से हार्ट फेल होगा, हार्ट अटैक होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, पर ये दूसरे प्रकार का भय है। इस भय से भगवान के चरणों में आसक्ति बढ़ेगी, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा, भक्तों के प्रति प्रेम बढ़ेगा। ये भय भक्तों को होता है। सुविस्मिता यहां पे लिख रहे, कंसा भीता सुविस्मिता। देवकी कंस को लेके भयभीत थी और कृष्ण को देख के सुविस्मित थी। देवकी का भय था, अरे ये चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया बच्चा है, और आठवीं संतान ऑलरेडी कंस को पता है, इसी के लिए वेट कर रहा है, कहीं कंस जो कि इतना बलशाली है, शक्तिशाली, आके यहां पे इस मेरे बच्चे को हत्या ना कर दे, इस बच्चे को कुछ हानि ना पहुंचा दे। हालांकि वो देख रही है, जान रही है ये भगवान है, परंतु उनके प्रेम के वश में आके, प्रेम के वशीभूत होके वो कंस के प्रभाव से भयभीत हो जा रही है। ध्यान देने की बात है, देवकी अपने लिए भयभीत नहीं हो रही हैं, देवकी कृष्ण के लिए भयभीत हो रही हैं। ये डिफरेंस है दोनों भय के अंदर में। कंस की वजह से भयभीत हो रही हैं, परंतु कृष्ण के लिए भयभीत हो रही हैं। कंस की वजह से अन्य लोग भी भयभीत थे, जो ब्राह्मण थे, जो ब्राह्मण पत्नी जो भक्त बनी कृष्ण की, जय द्विज पत्नी जया, तो वो जो ब्राह्मण पत्नी थी, उनके जो हस्बैंड थे जो ब्राह्मण थे, वो भी भयभीत थे कंस से, और जानने के बाद कि उनकी पत्नी कितनी उच्च श्रेणी की भक्त है और कृष्ण परम भगवान, ये जानने के बाद भी अपने ड्यूअलिटी के विजन में, अपने की वजह से वो कंस के भय में वशीभूत होकर कृष्ण के पास तब भी नहीं जा पाए जब उनकी पत्नी भाग के चली गई, तब भी वो कंस के भय से नहीं जा पाए। बोलते रहे हम पे धिक्कारे धिक्कारे धिक्कार करते रहे परंतु जा नहीं पाए। परंतु यहां पे देवकी का जो भय है उनकी तरह भय नहीं है, देवकी का भय उनकी गाढ़े प्रेम की वजह से भय है। जब ये गाढ़ा प्रेम हो जाता है भगवान पे तो भगवान के लिए भय होता है। यशोदा माता हमेशा भयभीत रहती थी, ये कृष्ण कहां जा रहा है। इधर चलते चलते छोटे से कृष्ण ने कभी चढ़ते चढ़ते छिपकली के पीछे भागते थे, गिलहरी के पीछे भागते थे, कीड़े मकोड़े के पीछे भागते थे, यशोदा खींचती रहती थी खींचती थी, इतना चंचल बच्चा, कभी कभी गाय की पूछ बछड़े की पूछ पकड़ लेते थे, कभी कुछ करते रहते थे, हमेशा वो भयभीत रहती थी। और तो और हम सब पढ़ते हैं कृष्ण पुस्तक के अंदर में, जब उनको खबर मिली कि कालिया दाह के अंदर में कृष्ण कूद पड़े हैं और जितने भी ब्रजवासी थे भागते भागते वहां पे पहुंचे और देखा कालिया ने कस के कृष्ण को जकड़ रखा है, और ये देखते ही ब्रजवासी इतने भयभीत हो गए, मान लो उनके प्राण निकल गए वहां से, उस भय को होल्ड नहीं कर पाए, उस भय को सह नहीं पाए, इतना भय। परंतु वो भय अपने लिए नहीं था, वो भय कृष्ण के लिए था। और इस भय को कहते हैं विप्रलंब, कह सकते हैं जो भी कह सकते हैं, कृष्ण के प्रति गाढ़ प्रेम, इससे उनका प्रेम कृष्ण के प्रति जो था वो और गाढ़, कृष्ण को कहीं हो ना जाए ये सोच सोच के उनका प्रेम जो कृष्ण के प्रति और गाढ़ा होता चला। तो शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहे न मे, तो ये भक्तों को भय होता है कि कृष्ण को कहीं ना हो जाए। और हमने देखा कि अभक्त जो भक्त के पूर्ण शुद्ध भक्त नहीं है उनको भय है माया की वजह से, भक्तों को भय है कि कृष्ण को कुछ ना हो जाए उसकी वजह से। और इंटरेस्टिंग चीज है कृष्ण को भी भय होता है, ये भय का तीसरा लेवल है। कृष्ण को भय होता है कैसा, हालांकि भगवान बोलते हैं कि अग्नि दहति मत भयात, ये जो अग्नि है वो मेरी वजह से मेरे भय से जल रही है, हवा है ये मेरे भय से चल रही है, सूर्य है ये मेरे भय से निकल रहा है। परंतु भागवतम में ये कुंती देवी कहती है यद बिभेति स्वयं भयम्, आप से जिससे भय भी भयभीत है आपको भी मैंने देखा भय। यशोदा भियो लुखला धव मानम, हम लोग गाते हैं परामृष्टम अत्यंत तो द्रुत्य गोप्या, और एक श्लोक के अंदर में भगवान के भय को ही ग्लोरीफाई कर रहे हैं। कैसा भय, रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्मम रिजंतम कराम भोज युग्मेन सातंक नेत्रम, रो रहे भगवान। कैसे रो रहे, एक बार मैं वृंदावन में था, मेरा सौभाग्य था लोकनाथ महाराज इस पे चर्चा कर रहे थे और बोलते रुदंतम मुहुर नेत्रम, बच्चे जैसे रोते हैं आंख मलते भगवान भी रो रहे थे कसके, रुदंतम मुहुर नेत्रम, और क्या करते बार बार मुंह बार बार अपने हाथों से आंखों को मल रहे थे, बीच बीच में आंख हटा के देख रहे थे छड़ी फेंकी क्या अभी भी नहीं फेंकी, फिर से दौड़ दो कस के रो रहे थे। और ऐसे नहीं रो रहे थे क्या, सांस में सिसकी ले लेकर रो रहे थे, मुंह श्वास से कम कसके सिसकी ले रहे हैं, और उनके कंठ में जो उनकी मृत रेखाएं वो माए वो हिल नहीं कसके। तो भगवान का भी भय है, नरसिंह देव का पता नहीं भय था कि नहीं पर कृष्ण का भय जरूर था। तो वो भक्त भी भयभीत हो जाते हैं, तो और भगवान भी भयभीत हो जाते हैं भक्त से। तो ये भय क्यों है, ये भगवान के गाढ़े प्रेम की वजह से भक्त भय। जब जैसे भक्त तत्व को प्रेम की वजह से भूल जाते हैं, वैसे भगवान भी तत्व को प्रेम की वजह से भूल जाते हैं, भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं और सोचते ये मेरी मां है और मुझे डांटेगी और मारेगी, तो वो कृष्ण का भय है। एक बार हम सुनते हैं वो कथा कि कृष्ण जब जंगल में गए, जंगल में तावाग्नि लग गई, सब तरफ अग्नि अग्नि आग आग लग रही थी, सारे सारे जितने भी ग्वाल बाल थे भय से जोर जोर से चिल्लाने के लिए कृष्णा कृष्णा काना 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 हमें बचाओ 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 जोर से बोलने लगे। तो कृष्ण सोचा अब क्या करना पड़ेगा, लगता है ये अग्नि तो मैं पी लेता हूं। पर बोले रुक जाओ, मैं देखो मैं अग्नि पीऊंगा, पर सब लोग, सॉरी ये नहीं बोला अग्नि पीऊंगा, पहले बोला सब लोग आग बंद करो, आग बंद करो। तो सब लोग आग जल लेते, बोला आग तो बंद ही कर लेते, चलो कोई बात जो भी करना करो, आग बंद कर लिया। जब कृष्ण ने देखा सबने आग बंद कर ली, तो क्या किया कृष्ण ने, सारी अग्नि पी ली। आग क्यों बंद करवाई थी कृष्ण ने? आग इस वजह से बंद करवाई थी, बहुत वर्ष पूर्व जब कृष्ण ने मिट्टी अंदर ले ली थी, मिट्टी अंदर ले लिया था मुख के अंदर में, तब कंप्लेन लेके पहुंच गया था सुयशोदा माता के पास में, कृष्ण को बहुत भय हुआ था। आज जब अग्नि लेंगे और सब देख लेंगे तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एक 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 गोप था, एक ग्वालभाल था जो बीच में लंगड़ा था थोड़ा सा, बीच में उसने यूं करके देखा कृष्ण कर क्या रहा, देख रहा अग्नि, हा कृष्ण, और कृष्ण अग्नि पीते हुए देख लिया, देख रहा अरे अब उनको लगा अब तो हो गया काम, अब ये जाएगा यशोदा माता से बोलेगा। अब वो सब भाग, वो भागा घर की तरफ, पर उसके पैर में थोड़ा लंगड़ा था, और वो भागेगा नंदगांव की तरफ, कितना भी भागेगा अपनी स्पीड में भागेगा। कृष्ण ने सोचा अब क्या करें क्या करें, कृष्ण को एक आइडिया, कृष्ण भागे बहुत तेजी से, भाई के मारे भाग रहे हैं, भागे 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 तेजी से उसको क्रॉस कर दूं। वो बोले कोई बात नहीं, भागो मैं आके बता रहा हूं तुम्हें, यशोदा माता को तो छोड़ूंगा नहीं, मैं बताऊंगा तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं, यशोदा को जरूर बताऊंगा। और कृष्ण भागते भागते नंदगांव पहुंचे, और नंदगांव में यशोदा माता को बोले मैया 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 भूख लगी, दूर से चिल्लाते हुए आ रहे यशोदा माता, कृष्ण को भूख लगी, कृष्ण के फेवरेट जैसे यशोदा माता बनाती थी, भूख लगी, कृष्ण ऐसे भागते हुए आ रहा है, ये देख के उनका हृदय खिल बैठा। तुरंत उन्होंने गरम गरम भात जो रेडी किए थे कृष्ण को खिलाने के लिए वो लेके आए, बिल्कुल गरम गरम भात, चावल था, अन्य डिशेस थी, और कृष्ण के पास में रखे, और कृष्ण को अपने हाथों से लिया, मुंह में डाला, कृष्ण ने मुंह में डाला, कृष्ण हाँ मैं बहुत गर्म मेरे से खाया नहीं जा रहा। यशोदा माता कहा चलो कोई बात नहीं, फिर यशोदा मैया अपने मुख से फूक फूक कर कृष्ण को लिया, बोले हाँ ठीक है। उतनी देर में वो कृष्ण का जो मित्र है वो आ गया, बोले मैया मैया मैंने आज जंगल में एक चीज देखा। बोले क्या देखा? मैं आपको बताऊंगा, ये कृष्ण जानते हो आग भी गया गरम गरम सारी आग, जैसे मतलब एक थप्पड़ दिया लगा पड़े, इसे गरम चावल तो खाया नहीं जा, आग भी गई। तो कृष्ण का भी भय है, और कृष्ण को उस भय की वजह से बहुत सारी लीला करनी पड़ती है। तो अभक्तों का भय है, कृष्ण का भय है, भक्तों का भय है, तो भय में सब लोग हैं, पर भय की कैटेगरी अलग अलग है। प्रभुपाद जी इस श्लोक के ऊपर विशेष तात्पर्य देते हैं, ऐसा तात्पर्य कोई और आचार्य नहीं दे। वो तात्पर्य क्या बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी अपने भय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उनका भय क्या था? प्रभुपाद जी पहले मेंशन करते हैं, कृष्ण हैज टेकन बर्थ इन दिस कृष्ण कॉन्शियस, इन द वूम ऑफ दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के रूप में कृष्ण ने भय लिया है, जन्म लिया है। ये मूवमेंट एक्चुअली कृष्ण का ही अवतार है। कृष्ण बोलते धर्म संस्थापनार्थाय सम भवामी युगे युगे, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं प्रकट होता हूं, कृष्ण ने बोला। और ये अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ से हो रही धर्म की स्थापना हो रहा है, तो कृष्ण का अवतार है ये मूवमेंट। तो प्रभुपाद जी अपने कंसर्न को व्यक्त करें कहीं इस मूवमेंट को कुछ हो ना जाए। प्रभुपाद जी के जीवन, जब प्रभुपाद जी यहां पे धराधाम पे फिजिकल रूप में थे, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल के साथ में, बड़ी कठिनाई के साथ में इस मूवमेंट को एस्टैब्लिश किया। श्रील प्रभुपाद जी ने ही नहीं, पूर्ववर्ती आचार्यों ने बहुत कठिनाई झेली इस संदेश को, इस मूवमेंट को आगे पहुंचाने के लिए। जैसे एक रिले रेस होती है, ध्यान से एक बैटन आगे पास ऑन करता है, वैसे एक के बाद परंपरा में एक से एक आचार्य हुए, एक प्रमुख आचार्य, उन्होंने एक दूसरे को बैटन पास ऑन किया। चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, संकीर्तन आंदोलन को फैलाया, षट गोस्वामी ने उसको एस्टैब्लिश किया। उसके बाद में जीव गोस्वामी विशेषकर उनको उन्होंने ट्रेनिंग दिया, श्रीनिवास नरोत्तम श्यामानंद को, और वो षट गोस्वामी के जो पुस्तकें थे उनको लेके बंगाल उड़ीसा की तरफ गए। जाते टाइम वो भी भयभीत थे, हैवी सिक्योरिटी थे उस गाड़ी के साथ में, बहुत हैवी सिक्योरिटी, संदूक था, संदूक के ऊपर संदूक को एक और संदूक के अंदर, उसके एक और संदूक के अंदर, उसके ऊपर वैक्स की कोटिंग थी, ये थी, कई गार्ड्स थे। और वहां विष्णुपुर
यूपी ईस्ट और बिहार थोड़ा डेंजरस एरिया है। महाप्रभु भी उपदेश देते हैं जगदानंद पंडित उन सबको, जब उधर से बिहार यूपी ईस्ट से निकलना तो संभाल के निकलना। वो बंगाली को स्पेशली किडनैप कर लेते हैं, कशी क्षत्रिय के साथ निकलना। और महाप्रभु भी बोलते ना चैतन्य चरितामृत में पढ़ेंगे, तो वहां से जब निकले तो जिस चीज का खतरा था वही हुआ, वो पुस्तकें गायब हो गई। और जितने भी ये तीन आचार्य थे बहुत भयभीत, बहुत दुखी, क्या होगा, क्या मुख दिखाएंगे हम जीव गोस्वामी को, क्या होगा, जो षट गोस्वामी के दिव्य में लिखे हुए ग्रंथ ऐसे ही गायब हो गए। सभी परेशान थे। श्रीनिवास आचार्य ने फिर बीड़ा उठाया कि मैं इसको ढूंढ के निकालूंगा। ऐसा नहीं कि वो शांति में, कई लोग सोचते हैं आध्यात्मिक जीवन का मतलब अब हम शांति में रहेंगे, मौज मस्ती में, आराम से, टेक इट इजी, रिलैक्स, जस्ट चिल। पर यहां पे जो श्रीनिवास आचार्य थे या ये तीनों आचार्य थे, ये रिलैक्स नहीं थे, ये भयभीत थे। ऐसा भय जिम्मेदारी का सूचक है, क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी उठाई थी जीव गोस्वामी के लिए, षट गोस्वामी के लिए, परंपरा के लिए। उसी प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर चिंतित थे आगे कैसे जाएगा यह मूवमेंट। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की अपनी किरण को प्रकट करें। श्री भक्ति सिद्धांत सरोवर ठाकुर प्रकट हुए और उन्होंने मूवमेंट को फार एंड वाइड स्टैब्लिश किया। पूरे भारत में स्टैब्लिश करने के बाद जब प्रभुपाद उनसे राधा कुंड पे लगे तो उन्होंने अपने चिंता का उन्होंने व्यक्त की प्रभुपाद जी से, बोला आगुन ज्वलिबे, आग लगेगी गौड़िया मठ के अंदर में। और जैसा उनका भय था वैसा ही हुआ, गौड़िया मठ टूट गया। प्रभुपाद जी ने सारा देखा था, सुना था, गौड़िया मठ को टूटते बिखरते हुए देखा था। और प्रभुपाद जी ने उसके बाद में एक और सोसाइटी को स्टैब्लिश किया झांसी के अंदर में, लीग ऑफ डिवोटीज। स्टैब्लिश करने के सारे प्रयास, सही तरीके से प्रयास करने के बावजूद भी प्रभुपाद ने अपने सामने उसको बंद होते हुए देखा। प्रभुपाद जी का एक नहीं डबल एक्सपीरियंस थे, दोनों महाभागवत के द्वारा स्टैब्लिश किए हुए, एक रे ऑफ विष्णु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के द्वारा शुरू किया हुआ, दूसरा स्वयं के द्वारा सेनापति भक्त स्वयं के द्वारा स्टैब्लिश किया हुआ। ये डबल एक्सपीरियंस के द्वारा प्रभुपाद जी देख रहे थे, वो मूवमेंट भी बंद हो गए थे। तीसरा श्रील प्रभुपाद इस्कॉन को स्थापित करते हैं और इस्कॉन स्थापित करते ही बहुत सारे चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं शुरुआत के समय से ही। बहुत सारे चैलेंजेस, उस समय एक डी प्रोग्रामिंग मूवमेंट हुआ, आजकल भी चर्चा होती है, स्कॉन वाले ब्रेन वॉश कर देते हैं बच्चों का, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, मीडिया में ये में बहुत कसके कोर्ट केस हुआ, जबरदस्त कोर्ट केस हुआ, ये प्रूव करने के लिए कि ये कृष्ण भावना अमृत आंदोलन अनऑथेंटिक है, नॉन बोनाफाइड है। और बहुत बड़े स्केल पे ये ऑपोजिशन था। और प्रभुपाद जी, मैं ट्रांसेंडेंटल डायरी पढ़ रहा था हरीश्वरी प्रभु की, प्रभुपाद जी गहरी चिंता में थे, खूब खूब उस पर चर्चा करते थे कैसे सिचुएशन से डील करना है, बहुत प्रैक्टिकल चीजों को चिंता करते थे, बहुत फिलोसॉफिकल आउटबुक लेते थे, परंतु चिंता में रहते थे प्रभुपाद। यह चिंता है प्रभुपाद जी की, महाभागवत होते हुए भी प्रभुपाद चिंता में कर रहे हैं कि आंदोलन का क्या होगा, क्योंकि उनके पास डबल एक्सपीरियंस है कि आंदोलन को कुछ हो सकता है। आंदोलन के बाहर से समस्याएं थी, आंदोलन के अंदर में समस्याएं थी। उनके कभी कभी वरिष्ठ शिष्य उनकी बात नहीं सुनते थे, कभी कभी मतभेद हो जाता था, स्प्लिट्स हो जाते थे, लोग छोड़ के चले जाते थे। प्रभुपाद जी के ऊपर बार बार चीजें गिरती थी, प्रभुपाद जी सहते रहते थे और उनकी चिंता बढ़ती जाती थी। और प्रभुपाद जी बोलते हैं आई वॉन्ट टू पास ऑन दिस कर्स जो मुझे मिला है टू माई डिसाइपल्स, दक्ष प्रजापति के केस में कहते हैं कि पेरेंट्स मेरे को कर्स कर रहे हैं। तो ये कौन सा कर्स है, ये एंग्जाइटी कि ये मूवमेंट को संभाल के रखा जाए, हालांकि कृष्ण स्वयं प्रकट है इस मूवमेंट में, परंतु इस मूवमेंट को संभाल के रखा जाए। प्रभुपाद जी बोलते कि 10,000 साल के लिए है, परंतु फिर भी उनकी चिंता है इस मूवमेंट को संभाल के रखा जाए, वो चाह रहे हैं वो आगे पास ऑन करें अगली जनरेशन को। और श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों ने क्या बखूबी के साथ में उसको हैंडल किया। इस्कॉन
में इतनी समस्या थी कि लोग कहते थे इसे इज गॉन, इज गॉन, कि इज ये कौन है, इज नाउ गॉन, चला गया। परंतु भक्तों ने गहरी चिंता ली, जिम्मेदारी ली प्रभुपाद जी के इस आंदोलन को बचाने के लिए, और क्या हो गया, यह आंदोलन कई गुना ज्यादा, 108 सेंटर थे प्रभुपाद जी के समय, आज लगभग 700 केंद्र हैं विश्वविख्यात, कई गुना आगे बढ़ गया। परंतु प्रभुपाद जी के शिष्यों के जिसको उनके लीडर्स हैं, अब चिंता है ये आगे कैसे जाएगा। अब वो भय का जो बैटन है, एंग्जाइटी का बैटन है, जो रिले रेस में आगे चलता रहता है, दे लुकिंग टू पास इट ऑन, वो आगे देना चाहते हैं, आगे कौन है लेने के लिए, वो देख रहे हैं कौन है ले सकता है इसको आगे, वो इस वजह से वो अर्ज करते हैं आने वाले पीढ़ी को, टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लीजिए। मैंने प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्यों को ये सुनते हुए बोलते हुए कई बार सुना, टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। विशेषकर अगर हम श्रील प्रभुपाद तिरुभाव दिवस पे जाएं श्री वृंदावन धाम में, और प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्यों से सुने, पिछले कुछ वर्ष से लगातार वो अपने डिस्कशंस में यही बोल रहे हैं कि अगली पीढ़ी आगे जिम्मेदारी उठाए। समस्या होंगी आध्यात्मिक मूवमेंट में, कृष्ण लीला करते हुए कृष्ण के लीला में समस्याएं थी, कृष्ण बहुत नटखट थे, पर कृष्ण यशोदा ने छोड़ा नहीं, यशोदा ने उनके लिए चिंता ली। इस मूवमेंट के अंदर में भी बहुत सारी समस्याएं होंगी, पर हम इस मूवमेंट पे उंगली उठाएं, उससे अच्छा यह है कि हम मूवमेंट में आके जिम्मेदारी उठाएं। व्हाई टू बी अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, लेट अस बी अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। इस आंदोलन के अलावा और क्या होप है लोगों के पास में, और क्या रास्ता है लोगों के पास में, किसका आश्रय ले सकते हैं? सब लोग गलत मार्ग दिखा रहे हैं, सब लोग झूठ बोल रहे हैं, सब लोग झूठ बोल रहे हैं, स्कूल से लेके कॉलेज से लेके सब लोग गलत प्रोपागैंडा कर रहे हैं, इससे खुशी मिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कैसे हर जगह। जैसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, जहां पर श्रील प्रभुपाद की पुस्तक, श्रील प्रभुपाद के दीवान मैसेज सत्य लोगों पर पहुंचा, इसके अलावा क्या है? अगर इसमें आगे बढ़ के आंदोलन लेना, जिम्मेदारी लेना, उसके लिए जीवन में एंग्जाइटी होगी, चिंता होगी, ज्यादा जिम्मेदारी लेंगे तो ज्यादा चिंता होगी, बोलेंगे हमारे पास ऑलरेडी बहुत चिंता है अपने जीवन में, व्यक्तिगत चिंताओं की वजह से, व्यक्तिगत अपने लिए खाली हम जिम्मेदारी और बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो उससे भौतिक फियर होगा, भौतिक फियर से हम, भौतिक भय से हम फंसते जाएंगे, प फ ब भ म, परिश्रम, भय, फेन, बंधन और मृत्यु, पाफा बाभा, भय और मृत्यु, पाफा बाभा। परंतु आध्यात्मिक भय से ऐसा नहीं होगा, जब हम इसके लिए, इस आंदोलन के लिए जिम्मेदारी उठाएंगे, भय और एंग्जाइटी लेंगे, तब हम इस भय से मुक्त होंगे। अगर हमें लग रहा है हमारे जीवन में हम बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं, हम बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, और स्पेशली इस आंदोलन में सेवा करते हो, तो मतलब कुछ शायद प्रॉब्लम है, शायद चिंता और लेनी चाहिए, और एंग्जाइटी, इतना रिलैक्स्ड अगर है तो फिर कुछ और एंग्जाइटी लेने का शायद समय है। उस एंग्जाइटी को लेने की वजह से क्या होगा, हमें कृपा मिलेगी, ब्लेसिंग्स मिलेगी आचार्य की, श्री प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होंगे कि हाँ ये जिम्मेदारी उठा के, ये एंग्जाइटी लेके गुरु परंपरा की एंग्जाइटी कम कर रहा है। जब कोई बेटा बड़ा होकर पिताजी के बिजनेस को संभालता है, उसकी चिंता उठाता है, तो स्वाभाविक रूप से पिताजी का प्रेम उसको मिलेगा। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि मैं अपने गुरु का बेटा हूं, मैंने उनकी चिंता उठाई कि विश्व भर में कृष्ण प्रेम कैसे बांटा जाए। सो इट इज टाइम कि हम भी सही पुत्र हो सकें, श्रील प्रभुपाद के ग्रैंड सन हो सकें, और सही पुत्र हो सके गुरु से परंपरा के अंदर में, सही शिष्य बन सके चिंता उठा के। बस एक कॉशन है कि चिंता उठाते टाइम श्रील भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर कहते थे, द टू टाइप्स ऑफ एंग्जाइटीज, मैनेजेबल एंग्जाइटी, अनमैनेजेबल एंग्जाइटी। हमें चिंता अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उठाना चाहिए, ऐसे नहीं कि इतनी चिंता उठा ली कि भक्तों के प्रति अपराध होने लग गए, हमारी साधना कोलैप्स कर गई और हो गए, हम भी चिंतित हो गए और कोलैप्स कर गए, ऐसा नहीं है। कैलकुलेटेड अवस्था में बढ़ाते रहना चाहिए, जैसे एक बॉडी बिल्डर होता है या कोई दुबला पतला व्यक्ति भी, उसको अगर मसल्स बनानी है तो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डंबल उठाएगा, वेट उठाएगा, वो उठाएगा तो मसल और बढ़ेगी,
फिर और वेट बढ़ाएगा और बढ़ेगी, और वेट उठाएगा और बढ़ेगी, और एक समय वो बहुत उठा लेगा, परंतु अगर पहले दिन उठा लेगा तो धराशायी हो जाएगा। तो जितना हम उठा सकते हैं कंफर्टेबली उससे थोड़ा और, जितना हमने उठाया हुआ है लेट अस टेक वन मोर स्टेप, टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है जिसको हम कभी भी परफेक्ट नहीं कर सकते। टेक मोर, आपने मोर ले लिया, उसके बाद में फिर पढ़ेंगे टेक मोर और थोड़ा और, फिर आप उसको करते करते हम एक्सपर्ट हो जाएंगे, फिर टेक मोर जिम्मेदारी और जिम्मेदारी और जिम्मेदारी और जिम्मेदारी और जिम्मेदारी, और करते करते फिर हम पूर्ण रूप से भयभीत हो जाएंगे कृष्ण के लिए। और कृष्ण के लिए भयभीत होने पे कृष्ण की खास कृपा मिलेगी, कृष्ण के लिए भयभीत होने पे कृष्ण से प्रेम उत्पन्न होगा, या पुत्र के प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, हम कृष्ण प्रेम के अंदर में होंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, गौर भक्त वृंद की जय। प्रश्न पूछ के मुझे भयभीत मत। यस रोदी एनी क्वेश्चन सेलेक्टेड टेक।
अपने भय से मुक्त होने के लिए आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत सुंदर आपने ये पूरा टॉपिक कवर किया। तो मेरा आपसे प्रश्न ये था कि मैं आपके पर्सनल जीवन में भी देखता हूँ कि कैसे हमारे पास दो एंग्जाइटी होती है, एक अपने पर्सनल इम्प्रूवमेंट की और एक इस टीचिंग मूवमेंट की, अपनी सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो कैसे आप, मैं देखता हूँ कि आप दोनों बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, अपनी पर्सनल इम्प्रूवमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आप कुछ टिप्स शेयर करें कि कैसे हम दोनों को बैलेंस करके मैनेजेबल एंग्जाइटी में रहें,
मुझे एम्बैरस कर। मैं आपके जीवन से जो सीखा मैं शेयर करता हूँ कि हमें वरिष्ठ भक्तों के गाइडेंस में रहने से बहुत लाभ रहता है, और जो हमें बोले बहुत रिलैक्स चल रहे हैं आप, थोड़ा जिम्मेदारी लीजिए, तो हमें रेजिस्टेंस नहीं करना चाहिए। और हम मूवमेंट में जुड़े हुए भक्तों के संपर्क में हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वरिष्ठ भक्त हमें प्रचुर मात्रा में जिम्मेदारी लेने के लिए एवर रेडी हैं। कई बार रेजिस्टेंस हमारे साइड से होता है, और अपनी सिचुएशन को भी ट्रांसपेरेंटली एक्सप्रेस करते रहे कि हमारी साधना कैसे चल रही है, हमारी डीलिंग्स कैसे चल रही हैं, और उस समय अगर कभी कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, हेल्थ कैसे चल रही है, उस समय अगर वरिष्ठ भक्त देखें अरे नहीं नहीं मैरिज नहीं कर पा रहा है, उस समय हमसे कहें कूल डाउन काम डाउन, तब हमें उस समय आसक्त नहीं होना चाहिए, अपने को अपनी अपनी जिम्मेदारियों को थोड़ा कम भी कर सकते हैं, इन अ वे दैट वी कैन मैनेज वेरी नाइसली, उस प्रकार से हम अच्छे से मैनेज कर सकें। थैंक यू।
हरे कृष्णा। वन थिंग, आई नेवर योर टाइम प्रॉपर डबल एक्सपीरियंस, व्हाट वाज दैट?
गौड़िया मठ एस्टैब्लिश करते हो, दूसरा लीग ऑफ डिवोटीज,
लीग ऑफ डिवोटीज, इस्कॉन वाज द थर्ड एक्सपीरियंस,
इस्कॉन इज द थर्ड एक्सपीरियंस ऑफ फियर एंड एंजाइटी, जहां पे कुछ होना चाहिए।
सेकेंड थिंग, जो आपने भय के बारे में बोला, तो नाउ फ्रॉम भागवतम पॉइंट ऑफ व्यू भयम द्वितीय अभिनिवेश तस्यात्, और स्पिरिचुअल एंजाइटी मेटेरियल एंजाइटी है, क्वाइट ऑफन भय को मेटेरियल सेंस के अंदर देखा जाता है कि इफ देर इज नो फियर देर इज नो इम्पेटस फॉर पीपल टू वर्क अहेड ऑल्सो, तो हाउ डू वी सी दैट? मतलब भय इज इट अ पॉजिटिव इमोशन? इवन मटेरियल सेंस में भी अगर देखा जाए, नॉर्मली हम आहार निद्रा भय मैथुन जब बोलते हैं तो वी आर इन अ क्रिटिकल मोड टू वर्ड्स भय लाइक दैट, है ना? मटेरियल फियर आई एम टॉकिंग ऑफ, इवन मटेरियली, लेकिन अगर फियर ऑफ फेलियर ना हो तो व्यक्ति पढ़ाई नहीं करेगा, अगर बीमार पड़ने का फियर ना हो तो व्यक्ति कभी मतलब दवाई हेल्थ ठीक नहीं रखेगा, कोई प्रिकॉशन नहीं लेगा, तो समटाइम्स फियर एक्ट, समटाइम्स नहीं आई थिंक ऑफन और मेजोरिटी टाइम फियर एक्ट एज अ यू कैन से फॉर कंडीशन सोल और फॉर इन जनरल पॉजिटिव इमोशन, यू नो टू डू समथिंग पॉजिटिव, सो हाउ डू वी सी दैट एज, आई वॉन्ट योर कॉमेंट्स ऑन दिस।
धन्यवाद। तो प्रभु जी के प्रश्न है जो मैं समझ पाया कि भय की वजह से एटलीस्ट लोग कार्य तो करते हैं, एक्टिव करते हैं पॉजिटिव रूप में, और सही बात है भय की वजह से ही लोग कार्य करते हैं, भय ना हो तो लोग आलस में कई बार पड़े भी रहे, परंतु भय फीलिंग अपने आप में बहुत अच्छी फीलिंग नहीं है। भय की वजह से कार्य करने से श्रेष्ठ है हम प्रेम की वजह से कार्य करें,
तो हाँ ये सही है कि इस भौतिक जगत में, इस जगत के अंदर में हम भय की वजह से कार्य करते हैं, पर आध्यात्मिक जगत में कृष्ण बता रहे हैं कि हम प्रेम की वजह से कार्य करें। वो प्रेम की वजह से भय होता वो अलग चीज है, परंतु जो भौतिक जीवन के अंदर में जो भय की वजह से कार्य कर रहे हैं इसी वजह से उसको छोड़ने का प्लान बनाना चाहिए। हालांकि भय है, प भ ये पवर्ग है, परंतु हमें प्लान तो यही करना चाहिए कि हम उस भय से निकल सके। हालांकि उसकी वजह से हम कार्य कर रहे हैं, दैट इज देयर, पर अल्टीमेट हमारा मकसद यह है कि उस भय से हम मुक्त हो सकें। कि अगर हम सिर्फ उसको कहेंगे कि ये भय बहुत अच्छा है तो शायद हम उसके अंदर रहने का प्लान बना लें फॉरेनर, तो वो भी उचित नहीं है।
नाउ सेम अप्लाइज, आई एम सेइंग कि यही अप्लाई बहुत बार स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर भी होता है कि भक्त में डर होता है कि भगवत मतलब भौतिक जगत में गए तो इसीलिए हम भगवत धाम जाएं या माया में ना गिर जाएं, है ना, या भक्ति इसलिए करते हैं कि भौतिक भय से छुटकारा मिले। आपने भजन भी गाया, अभय चरणारविंद रे, है ना। तो बहुत बारी भक्ति का भी इम्पेटस इट कम्स फ्रॉम आइदर मेटीरियल फियर या ऐसा, है ना। सो आई मीन समटाइम्स ऑफकोर्स भय इज नॉट ग्लोरिफाइड, बट देखा जाए तो एक दृष्टिकोण से इट इज अ
जी बिल्कुल। सो अर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, अर्थो शब्द आता है जो लोग भयभीत होके दुखी होके आते हैं निश्चित रूप से। और भगवान स्वयं बोलते उदारा सर्व एवे थे, ये सारे लोग बहुत महान हैं, कैसे भी करके कृष्ण के पास में आ रहे हैं, तो भगवान के पास में आ रहे, तो उस प्रकार से भय अच्छा इम्पेटस भी भगवान के पास आने के लिए कारण बन रहा है। परंतु फिर भी भय अपने आप में अच्छी फीलिंग नहीं है, उससे निकलना हमें, ऑल्दो जैसे एक ऑपरेशन है तो ऑपरेशन हमारा होता है तो कटेगा, उससे पेन होगा, पर उससे हमें अल्टीमेटली हमारी बीमारी सही होगी, पर हम चाहेंगे कि ऑपरेशन हो ही ना और एंड में हम पूरा हेल्दी रहें। तो यस, भय कई जगह पे भगवान के पास आने में भी हेल्प कर रहा है, भय हमें जीवन में कार्यशील होने पे वर्क कर रहा है, परंतु भयभीत रहना एक अपने आप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। और कृष्ण हमें इस भय से निकाल के, पवर्ग से निकाल के अपवर्ग में लाना चाहते हैं। तो ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि हम भय से पूर्णतया मुक्त हो सके। थैंक यू वेरी मच। गौर भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।